بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 2 ہے. آج ہم کتاب دانش اقبال کے چند پہلو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طالب حسین سیال ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 2. उनकी इसी एक आदत ने उनकी तमाम खूबियों पर पानी फेर दिया. इकबाल ने हकीकत व माहियत शख्सियत पर गौर फिक्र करते वक्त कुरानी तालीमात को अपना रहनुमा बनाया है और जदीद मगरबी तहकीकात से भी इस्तफादा किया है. उनका मतमह नजर ऐसा मुआशरा था जिसमें आला इंसानी इकदार का दौर दौरा हो. इकबाल अकवाम की क्यादत के लिए आला शख्सियत के हामिल इंसानों की तमन्ना करते थे जिनकी निगाह बुलंद हो, सुखन दिल नवाज और जान पुरसोस हो. उनके सामने इंसान कामिल का नमूना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी. पैगंबर इस्लाम की खुदी मकाम अकमलियत पर फाइज थी. उनकी जात में इंसानी महासिन हद कमाल तक मुजस्सम हो गए थे. वो कामिल हुर्रियत और सुल्तानियत के उस मकाम महमूद पर थे जहाँ जमान और मकान बेमानी हो जाते हैं और नामुतनाही खुदी के जलवों का बेहिजाबाना मुशाहिदा किया जा सकता है. यहाँ इस अमर का जिक्र करना जरूरी है कि अल्लामा इकबाल का अब्दुल करीम अल जलीली की तरह इंसान कामिल का कोई मखसूस माबादु तबियाती या फलसफियाना नजरिया नहीं है और न ही वो नुक्ते नक्शे की तरह किसी सुपरमैन के मुंतजर थे. वो इंसानों की रहबरी के लिए मर्द मैदान, मर्द मोमिन, मीरे कारवां, मर्द फकीर और अमीर जुनू ऐसी तरकीब इस्तेमाल करते हैं. लेकिन वो इस ख्याल के हामी न थे कि हर दौर का कोई मर्द कामिल होता है जिसे गैर मामूली सलाहियतें अता की जाती हैं और वो मामूर मिनुल्लाह होता है. ना ही वो इस नजरिए के कायल थे कि कुछ इंसान खवास होते हैं जिनको दिलो दिमाग की खास सलाहियतें अता की जाती हैं जबकि अवामुन्नास की जहनी सलाहियतें मामूली किस्म की होती हैं. इकबाल शख्सियत परस्ती, थियोक्रेसी और मलूकियत के मुखालिफ थे. सैयद अल्ताफ हुसैन एक मजलिस इकबाल में हाजिर थे. वो बयान करते हैं, आजाबाद और आपके नजरिया फौकुल बशर के मुतालिक बातचीत हुई तो हमने आपसे दरियाफ्त किया कि फौकुल बशर की क्या तारीफ है. कहने लगे, हर सही मोमिन फौकुल बशर है और इस्लाम वो बेहतरीन सांचा है जिसमें फौकुल बशर ढलते हैं. चूंकि कार्लाइल की किताबें हमारे कोर्स में शामिल थी लिहाजा जिमनी तौर पर उसके नजरिया हीरो के मुतालिक भी तस्किरा आ गया. कहने लगे, हीरो की तारीफ यह है कि वो इंसान जिसके आमाल व अफ़ाल नौ इंसानी के लिए चश्मा हाय जिंदगी जारी करने वाले हों. शख्सियत परस्ती हीरोशिप हिंदू कौम की इम्तियाजी सिफत है. मगर इस्लाम इसके खिलाफ है. यहाँ आपने बतरी कताला नहीं बल्कि गुजारिश अहवाल वाकई के तौर पर एक तकरीब का किस्सा सुनाया जिस पर वायसराय के अलावा हिंदुस्तान की रियासतों के फरमारवा और दीगर अकाबिर जोमाए मुल्क का एक जम गफीर रौनक अफरोज था. कहने लगे, जिस वक्त महात्मा गांधी इस मजलमे में दाखिल हुआ तो करीबन सब लोग उसकी ताजीम के लिए उठ खड़े हुए. जिसके सामने से गुजरता वहाँ वही एहतरामन उठ खड़ा होता मगर जब मेरे पास से गुजरा तो मैं बदस्तूर अपनी जगह पर बैठा रहा. इसके बाद वायसराय ने चंद लोगों की दावत की जिनमें मैं भी मधु था. दावत के बाद वायसराय ने मुझे तन्हाई में कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बशर्ते कि आप किसी से उसका जिक्र न करें. मैंने कहा, कहिए. कहने लगे कि तकरीब पर महात्मा गांधी की ताजीम के लिए सब लोग उठ खड़े हुए यहाँ तक कि मैंने सर शफी को भी उठते हुए देखा मगर आप अपनी जगह पर बदस्तूर कायम रहे. इसका क्या सबब है? फरमाया, एक दो सेकंड तो मैं खामोश रहा मगर फिर मुझे दफतन जवाब सूझा और मैंने कहा, गालिबन आपको मालूम नहीं कि इस मुल्क में कई मुसलमान ऐसे हैं जिनके बाप दादा हिंदू थे. उनमें से अक्सर बेशतर हनूज अपने आबा व अजदाद की सिफात से मुत्तसिफ हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें से नहीं हूँ. फिर आपने कहा कि उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत परस्ती की मुखालफत का बेहतरीन मजहर है. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जमात के पास जब कभी जाते तो आपको दूर से देखकर ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते. आपने एक दो मर्तबा देखा और तीसरी मर्तबा मना फरमाया। ख्याल कीजिए वो हस्ती जिसकी खातिर उसके मुतबईन अपने खून का आखिरी कतरा गिरा देना दीनी और दुनियावी सआदत मंदी का वाहिद जरिया तसव्वुर करते थे, उसे इतना भी गवारा न था कि कोई उसकी खातिर उठ खड़ा हो। एक और वाकया याद आ गया। कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम का खाना खाने के बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हमरा आम तौर पर सहरा में बराए सैर जाया करते थे। एक रात का जिक्र है कि जब आप मसरूफ सैर थे तो चंद गजाल आपके पाँव को आकर चूमने लगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया, क़िबलाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवरों को तो ये सआदत नसीब हो मगर हम इसके लिए हमेशा तरसते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल खामोश हो गए, जैसे ताकत गुफ्तार यकलफ जवाब दे गई हो। चूंकि हमने सुन रखा था कि जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से आपकी क्या कैफियत हुआ करती है, लिहाजा हम हमतंदीद बनकर उनकी तरफ देख रहे थे और वो मिसाले मुजस्मा जामिद और साकित थे। कमरे में सन्नाटे का आलम था। खामोशी ने तूल पकड़ा, यहाँ तक के करीबन 1 मिनट इसी तरह गुजर गया। उसके बाद उनके चेहरे पर एक लर्जिश नमूदार हुई और उसके साथ ही रुखसारों पर आंसुओं की बारिश शुरू हो गई। सिसकते हुए कहने लगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज्जदुल्लाह अकरमु अखवालकुम, यानी बुजुर्गों की महज वाजबी ताजीम करो, सजदे के लायक सिर्फ खुदा ताला की जाते वाहिद है। बखुदा दुनिया भर की अदबियात में इससे बेहतर फकरा मुझे देखना नसीब नहीं हुआ। हम इस वाकये से और डॉक्टर साहब की कैफियत के मुशाहिदे से बेहद मुतासिर हुए। अम्बिया और रसूल को छोड़कर बाकी इंसानों के बारे में इकबाल का ये ख्याल है कि उनकी सलाहियतों में बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं होता। हमें जो फर्क नजर आता है वो बिलफेल है। वो पूरी इंसानियत को बुलंद मकाम पर देखना चाहते थे। वो हर इंसान से तवक्का रखते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को उजागर करे और सही व अमल से सही मकाम हासिल करे। इकबाल बनी नौ इंसान के एक असल के कायल थे, इसीलिए वो मसावात इंसानी पर गैर मुतजलजल यकीन रखते थे। इकबाल के तसव्वुर शख्सियत से हर शख्स को उम्मीद अफजा पैगाम मिलता है कि वो बासलाहियत है और अपनी कोशिश और मेहनत से बुलंद तर मकाम हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने कुछ अशखास को सलाहियतों और तवानाइयों से माला माल कर दिया हो और कुछ अशखास को कुंद जहन नालायक और कमजोर पैदा किया हो। बदबख्ती और खुशकिस्मती पैदाइशी नहीं बल्कि इंसान अपनी कुव्वत इरादी और मुसलसल जिद्दोजहद से अपनी तकदीर बनाता है। इकबाल मसावात इंसानी और अजमत अजमत मेहनत को बलीग पैराए में बयान करते हैं। वो अपने एक मकाले में कहते हैं, अगर मेरे दिल की पूछो तो सच कहता हूँ कि मेरे निगाह में उस बढ़ई के हाथ जो पेशे के मुतवातिर इस्तेमाल से खुरदुरे हो गए हैं, उन नर्म नर्म हाथों की निस्बत बदर जहाँ खूबसूरत और मुफीद हैं, जिन्होंने कलम के सिवा किसी और चीज का बोझ कभी महसूस नहीं किया। इकबाल बचपन की तालीम और तरबियत को तामीर शख्सियत के लिए बहुत अहम ख्याल करते हैं। उन्होंने अपने एक मजमून बउनवान बच्चों की तालीम और तरबियत मतबूआ 1902 में कहा है, हकीकी इंसानियत यह है कि इंसान को अपने फराइज से पूरी पूरी आगाही हो और वो अपने आप को उस अजीम शान दरख्त की एक शाख महसूस करे जिसकी जड़ तो जमीन में है मगर उसकी शाखें आसमान के दामन को छूती हैं। इस किस्म का कामिल इंसान बनने के लिए ये जरूरी है कि हर इंसानी बच्चे की तरबियत में ये गर्ज मलहूज रखी जाए, क्योंकि ये कमाल इखलाकी तालीम और तरबियत की वसातत से ही हासिल हो सकता है। जो लोग बच्चों की तालीम और तरबियत के सही और इल्मी उसूल को मद्देनजर नहीं रखते, वो अपनी नादानी से सोसाइटी के हुकूक पर एक जालिमाना दस्त दराजी करते हैं, जिसका नतीजा तमाम अफराद सोसाइटी के लिए इंतहाई दर्जे का मुजिर होता है। शख्सियत साजी का मसला नहायत दकीक और पेचीदा है। क्या इंसान अपने आप को बदलने पर कादिर है? बुरी खसलतें क्या विरासत में मिलती हैं? यह बुरी सोहबत और गलत माहौल का नतीजा होती है। माहिर नफ्सियात ने इंसानी फितरत, ख्यालात और जहनी रुझानात और हैजानात के तजिये किए हैं और कई नतायज मुंजबित किए हैं। अखलाकियात के मुदर्रिसीन और मुअल्लिमीन ने आला औसाफ की अहमियत और अफाकियत उजागर की है। सूफिया ने तज़किया नफ्स और तामीर शख्सियत के लिए जिक्र फिक्र के अलावा कई अमली तदाबीर और राह सलूक तय करने की मशकें बताई हैं। मुअल्लिमीन ने समाज के सुधार के लिए मुख्तलिफ लाहे अमल वज़ा किए और कई अमली कोशिशें की हैं। अखलाकी एतबार से मिसाली माशरे के क़याम का अमल हनूज जारी है। इस ज़मन में कई मुफक्किरीन और मुअल्लिमीन क़नूतियत पसंद हैं और कई रजाइयत पसंद हैं। इकबाल इनकलाबी फिक्र रखते हैं। वो इसके कायल है कि इंसान अपने आप को बदल सकता है और अपनी खुदी को मुस्तहकम कर सकता है। इकबाल बुनियादी तौर पर जद्दोजहद और अमल के मुफक्किर हैं, अगरचे वो खुसूसी अदा और फैजान नजर के भी कायल हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिंदगी की कामयाबियों और समरात में मेहनत और रियाजत का हिस्सा ज्यादा होता है। इकबाल तवारिस और माहौल के असरात का भी इनकार नहीं करते, लेकिन किरदार साजी में वो कुव्वत इरादी को बहुत अहमियत देते हैं। फ्राइड और उसके हम ख्याल मुफक्किरीन के नजदीक फर्द की जिंदगी के इब्तदाई 5 सालों में जिबिल्लतों का निकास उसके लिए राह हयात मुतय्यन कर देता है, जिससे फर्द छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। ये मुफक्किरीन तबई और नफसी जबरियत के कायल हैं, जबकि इकबाल कहते हैं कि फर्द अपनी कुव्वत इरादी और अज़्म के जरिए उम्र के किसी हिस्से में भी तगय्युर ला सकता है। अगर उसकी इब्तदाई जिंदगी में शर गालिब रहा हो तो वो तौबा के जरिए सालेहाना जिंदगी का आगाज कर सकता है। अगर वो पहले सहल अंगार काहिल और बेअमल रहा हो तो उसके लिए अमल की जिंदगी नामुमकिन नहीं है। वो तो अपनी तवानाइयां किसी भी वक्त उजागर कर सकता है और अपनी जिंदगी संवार सकता है। यही हाल अकवाम का है। पस्त और मगलूब अकवाम बेदार होकर तरक्की की राहों पर चल सकती है और अपनी तकदीर बदल सकती है। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये 400 बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। दरबे कलीम। इकबाल शख्सियत के हवाले से दो अहम नजरियात रखते हैं, एक एहतराम आदमियत का नजरिया, दूसरा बकाए दवाम का नजरिया। हर इंसान एक मुनफरिद शख्सियत है, उसके अपने अमियालो अवातिफ हैं, उसकी अपनी आरजुएं और तमन्नाएं हैं, और हर शख्स ये भी चाहता है कि उसे तहफ्फुज़ ज़ात हासिल हो और उसे अपनी शख्सियत की तामीर और तरक्की के लिए मुनासिब मौके हासिल हों। इंसान की अपनी खुदी और दूसरों की खुदियों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि माशरे और ममलिकत में ऐसा निज़ाम हो जिसमें मन और तू का ख्याल एहतराम हो। मजीद बना इकबाल मौत के साथ जिंदगी का खात्मा नहीं समझते। उनका ख्याल है जिंदगी एक है और मुसलसल है, लेकिन हयात बादल मौत सिर्फ उन लोगों को हासिल होगी जिन्होंने ऐसे अमाल किए होंगे जो खुदी को मजबूत करते हैं और जो एहतराम आदमियत के जामिन होते हैं। कमजोर और फनाइत के दिलदादा लोग और इंसानों के हकूक को गसब करने वाले लोग शायद मौत का मुकाबला न कर सकें और मुंतशिर होकर अपनी शख्सियत से महरूम हो जाए। इकबाल का बकाए दवाम का तसव्वुर जहाँ एक तरफ इंसान को रजाइयत और नफ्सियाती इम्तिसाद बख्शता है, वहाँ वो एक इमरानी गायत की भी तश्कील करता है और जिंदगी को मानवियत अता करता है। इंसान मौजूदा दुनियावी जिंदगी को बामकसद और पुरमाने समझ कर इखलाकी उसूलों पर अमल करता है और आने वाली दवामी जिंदगी की तैयारी करता है। उसकी ज़ात को एहसास बका और तसलसल हासिल रहता है और उसकी शख्सियत लाफानी एतमाद में सरशार रहती है। इसके बरक्स जो शख्स इकराम बशर के उसूलों पर अमल नहीं करता, अपने हुकूक व फराइज से नाआशना रहता है, हिम्मत और इस्तक़लाल से जिंदगी को पुरमाने और बामकसद नहीं बनाता, तो फर्द कमजोर होकर परेकाह की हैसियत इख्तियार कर लेता है। मौजूदा मुस्लिम माशरे के अफराद इसी किस्म की तस्वीर पेश करते हैं। इकबाल मिल्लत इस्लामी के उरूज व ज़वाल की कहानी बयान करते हुए कहते हैं, खुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गुयूर व खुददार, तुम अखुवत से गुरेज़ा वो अखुवत पर निसार, तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हुए कली को वो गुलिस्तां बकिनार। बांगे दरा। फिक्र इकबाल में शख्सियत बजात खुद नस्बुल ऐन है, वो खैर मुतलक है, इसलिए तमाम मुहर्रिकात और आमाल की गायत मजबूत शख्सियत का हुसूल होना चाहिए। अफलास बीमारी झूठ मुनाफ़त और महकूमियत वो हालतें हैं जो शख्सियत को कमजोर करती हैं। इनसे शख्सियत बतदरीज तहरील होकर मालूम हो जाती है। कुव्वत इरादी सिद्क़ व सफ़ा सेहत व तवानाई आज़ादी और मुआशी खुद की फालत इसलिए अच्छाइयाँ हैं कि इनसे शख्सियत मजबूत और मुस्तहकम होती है और नित नए मकासद पैदा करके अपनी बका का सामान मुहैया करती हैं। یہ اصول نہ صرف فرد پر بلکہ اقوام پر بھی صادق آتا ہے۔ اقبال بھرپور، پرخلوص، مصروف اور خلاق زندگی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ سہل کوش، بے عمل اور فلاکت زدہ زندگی کی مذمت کرتے ہیں بلکہ اس حالت کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ آئیے ہم فکر اقبال کی روشنی میں پاکستانی قوم کی حیثیت سے ایک فعال، خوشحال اور آزاد قوم کا تشخص ابھاریں اور اپنے قومی وجود کو معتبر بنائیں۔ یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک قوم کا ہر فرد مفلسی، بیماری، بیکاری اور بے عملی کے خلاف جہاد کر کے اپنی شخصیت کی تطہیر اور تعمیر نہ کرے۔ ہر فرد منوتو کے احترام کو دستور العمل بنا کر نفاق و فساد کی قوتوں کو شکست نہ دے۔ ہر وہ عمل اچھا ہے جو انفرادی اور اجتماعی شخصیت کو تقویت دے کر اسے آزاد، مضبوط، منظم، خلاق اور لافانی بنائے، اور ہر وہ عمل برا ہے جو افراد اور قوم کو کمزور کرے، مفلس اور محتاج اور مایوس و محکوم کر دے۔ کب ہوگا طلوع میری دھرتی پر سچ کا سورج جس کی روشنی ہر سو پھیلے گی؟ جب جہالت اور غربت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، لوٹ کھسوٹ اور مکر و فریب گمنامی کی چادروں میں منہ چھپا لیں گے، روز روشن میں محنت کشوں اور انصاف پروروں کے چہرے صاف نظر آئیں گے۔ ان اجالوں میں تازہ بستیاں آباد ہوں گی جہاں مرد و زن کا امتیاز نہیں ہوگا۔ قلب و نظر رکھنے والے غیور و جسور، علم و ہنر سے آراستہ اشخاص کے چہرے اطمینان قلب سے دمکتے ہوں گے۔ منبر و محراب سے محبت و قوت کی صدائیں بلند ہوں گی۔ احترام بشر اور دین مبین کے سائے پھیلتے چلے جائیں گے۔ دیہی خداؤں کی سلطنتیں مٹ جائیں گی۔ دہقان اپنی اپنی کھیتیاں سینچیں گے۔ میرے کسان پکے مکانوں کے مکین ہوں گے۔ محنت کشوں اور مزدوروں کی عظمت کے گن گائے جائیں گے۔ دین و دانش کی خرید و فروخت کی بجائے ہر بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہوگی۔ ہر جوان معاش میں خود کفیل ہوگا۔ جب میرے دیش میں محبت کے زمزمے پھوٹیں گے، اخوت اور بھائی چارے کے جذبوں کی چمن مہکیں گے۔ دیانت و صداقت کے تجلی زاروں میں محنت و عمل کے اشجار پھیلیں گے۔ قریب ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوگا جو کہیں گے غم نہ کرو اور خوف زدہ نہ ہو۔ بشارتوں کی بارشیں ہوں گی، قہر کے شعلے سرد پڑ جائیں گے اور مہر و وفا کی حکایتیں عام ہوں گی۔ تو اے اسیر مکان، لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیرے خاک داں سے دور نہیں، وہ مرغزار کے بیم خزاں نہیں جس میں غمی نہ ہو کہ تیرے آشیاں سے دور نہ ہو۔ یہ ہے خلاصہ علم قلندری کے حیات، خودنگ جستا ہے لیکن کما سے دور نہیں۔ فضا تیری مہو پروین سے ہے ذرا آگے، قدم اٹھا یہ مقام آسماں سے دور نہیں۔ کہے نہ رہنما سے کہ چھوڑ دے مجھ کو، یہ بات ہر رہ روے نقطہ داں سے دور نہیں۔ بال جبریل۔ حوالہ جات: نمبر 1، محمد اقبال علامہ، شذرات فکر اقبال، مرتب ڈاکٹر جاوید اقبال، مترجم ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، مجلس ترقی ادب لاہور، تبایدوم، مئی 1983، صفحہ 76-77۔ نمبر 2، محمد رفیق افضل، ڈاکٹر، مرتب گفتار اقبال، ادارہ تحقیقات پاکستان، دانشگاہ پنجاب لاہور، 1969، صفحہ 239۔ نمبر 3، میر غلام بھیک نیرنگ، سہ ماہی مجلہ اقبال، جلد 3، شمارہ 2، اکتوبر 1954۔ نمبر 4، جاوید اقبال، زندہ دور، جلد اول، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، 1985، صفحہ 114۔ نمبر 5، ابو اللیث صدیقی، ڈاکٹر، ملفوظات اقبال، اقبال اکادمی پاکستان، 1977، صفحہ 212-214۔ نمبر 6، محمد اقبال علامہ، مقالات اقبال، مرتب سید عبدالواحد، آئینہ ادب لاہور، 1988، صفحہ 99۔ اقبال کا تصور خیر و شر۔ اقبال کے نزدیک سرشت انسانی کی اصل شر نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کسی گناہ کی پاداش میں اس دنیا میں آیا ہے۔ بلکہ انسان کی تخلیق سلیم فطرت پر کی گئی ہے اور اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کر کے اپنی شخصیت کی تعمیر کرے اور چاہے تو شر کا راستہ اختیار کر کے اپنی شخصیت کی تحلیل کرے۔ اقبال کے اس تصور کی بنیاد قرآن حکیم کی یہ آیات ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس، سورہ نمبر 91، آیت 7-10۔ ترجمہ، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ پرانی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اخلاقی حادثہ ہے جو اسے خوب اور نا خوب کی تمیز عطا کرتا ہے۔ انسانی ضمیر نیک و بد میں امتیاز کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ ہر نفس کو اس بارے میں الہام کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، انسان کا ضمیر اسے برائی سے آگاہ کر دیتا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسلام انسانی ضمیر و وجدان کی گواہی کو سچ قرار دیتا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ انسانی ضمیر کی روشنی کا نہ صرف اسلام قائل ہے، بلکہ دیگر مذاہب عالم بھی انسان کے ضمیر کے فیصلوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کئی مفکرین انسان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کی سرشت میں نیکی ہے اور اس کے باطن کی آواز پر مبنی فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ مثلا کانٹ کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ انسان میں اخلاقی حادثہ ہے جس کی وجہ سے فطرتاً وہ نیکی کی طرف میلان رکھتا ہے۔ آزمائش و ابتلا کے وقت بھی اسے یہ احساس قائم رہتا ہے کہ فلاں عمل غلط ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص آزمائش کا مقابلہ نہ کر سکے اور جھوٹ بولے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جھوٹ عالمگیر قانون بن جائے۔ کینٹ کے نزدیک نیکی کرنا امر غیر مشروط ہے۔ نیکی کرتے ہوئے انسان اپنے فرض کو نبھاتا ہے، اس لیے اس کو کسی صلے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو بلا خوف و خطر اور بلا حرص و آز اچھا کام کرنا چاہیے۔ نیکی کو صرف نیکی کی خاطر سر انجام دینا چاہیے، اس میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ اقبال بھی انسانی شرافت کے قائل ہیں اور مسلم صوفیہ کی طرح اس مسلک کے حامی ہے کہ انسان کو نیکی کرتے وقت کسی حور و قصور کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے، اور نہ ہی اسے دوزخ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت میں صرف خدا کی محبت کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے۔ اس لیے اقبال وائز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ بانگ درا غزلیات۔ اقبال خیر و شر کو نفس، شخصیت اور اصرار خودی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انسان کی شخصیت جو ایک باشعور ہستی ہے، اس کے باطن میں اپنی تعمیر اور تخریب کی قوتیں مضبوط ہیں۔ وہ قرآنی قصہ آدم سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری سوچ کا میلان اس طرف ہے کہ وہ جنت جس میں آدم کو رکھا گیا ایک تصور ہے انسان کی ابتدائی حالت کا، جس میں وہ عملی لحاظ سے اپنے ماحول سے منسلک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ انسانی آرزوؤں کی چبھن سے ناآشنا تھا۔ انہی آرزوؤں کے پیدا ہونے سے انسانی ثقافت کی ابتدا ہوئی۔ پس ہم سمجھتے ہیں کہ حبوط آدم کی تمثیل کا مقصد یہ بتانا مقصود نہیں کہ اس قرائے عرض پر انسان پہلی دفعہ کیسے ظاہر ہوا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے انسان کے ارتقاء کو واضح کیا جائے، جو اس نے ابتدائی جبلتوں کی حالت سے شروع کیا اور ایک آزاد اور باشعور ہستی کے مقام تک پہنچا۔ ایسی ہستی جو کہ شک کرنے اور نافرمانی کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ قبول کا مطلب کوئی اخلاقی گمراہی نہیں ہے، یہ انسان کا سادہ شعور سے ادراک ذات کی پہلی کوند کی طرف عبوری سفر تھا۔ اس طرح وہ اپنے باطن میں خواب فطرت سے بیدار ہوا اور سمجھ گیا کہ اس کی حیثیت خود بھی اپنی جگہ پر ایک سبب کی ہے، یعنی وہ مجبور محض نہیں بلکہ اسباب خود بھی تخلیق کر سکتا ہے۔ قرآن کے مطابق یہ زمین کوئی دار العذاب نہیں، جہاں بد اصل انسان کو اس کی بنیادی گناہ کی پاداش میں اسیر کر دیا گیا ہے۔ انسان کی پہلی نافرمانی اس کے آزاد انتخاب کا پہلا عمل بھی تھا، और यही वजह है कि कुरान के मुताबिक आदम का ये तजावुज माफ कर दिया गया। इससे ये साबित हो गया कि अच्छाई अब कोई अमर मजबूरी नहीं, बल्कि ये आजाद इंसान का अपनी रजा और रफ्त के साथ आला अखलाक कदरों के सामने अपने आप को सुपुर्द कर देने के मुतरादिफ है। एक ऐसी हस्ती जिसकी हरकत एक मशीन की तरह लगी बंदी हो, वो अच्छाई की तख्लीक नहीं कर सकती। बस अच्छाई के लिए आजादी बुनियादी शर्त है। इकबाल मादम ब्लोत्स्की की किताब उलूम ए मुखफिया का हवाला देते हुए मजीद तशरीह करते हैं। शजर राज की वो अलामत था जिसे उलूम ए मुखफिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आदम अलैहि सलाम को उस दरख्त का फल चखने से इसलिए मना किया गया कि उसकी जात, उसके हवास और उसकी अकली सलाहियतें एक मुख्तलिफ किस्म के इल्म के लिए मौजूद थी। वो इल्म जिसमें सब्र आजमा मुशाहिदा दरकार होता है और जो बतदरीज हासिल होता है। शैतान ने आदम को उसी सरी दरख्त का फल खाने की तरकीब दी और आदम अलैहि सलाम आमादा हो गया। इसलिए नहीं कि शर उसकी सरिश्त में दाखिल है, बल्कि इसलिए कि वो फितरी तौर पर जल्दबाज अजूला है। उसने तहसीले इल्म के लिए मुख्तसर रास्ता इख्तियार करना चाहा। उसके इस रुझान को दुरुस्त करने का तरीका ये था कि उसे एक ऐसे माहौल में रखा जाए जो अगरचा तकलीफ दे हो, लेकिन उसकी जहनी सलाहियतों को बेनकाब करने के लिए ज्यादा मुनासिब हो। बस आदम को जिस्मानी लिहाज से तकलीफ दे माहौल में रखने से मकसूद उसको सजा देना न था, बल्कि उसका मकसद ये था कि इंसान के दुश्मन शैतान को शिकस्त दी जाए, जिसने अय्यारी से इंसान को मुसलसल नशोनुमा और फैलाव की लज्जत से बेखबर रखने की कोशिश की। नफ्स मुतनाहिया की जिंदगी का मुतज़ाहिर माहौल में इस बात पर दारोमदार है कि वो खुद अपने तजुर्बात की बदौलत अपने इल्म में इजाफा करता रहे, और इस मुतनाही खुदी यानी इंसान के सामने सही और अमल के कई इम्कान खुले हैं, जिनको वो इम्तहानों, आजमाइश और गलती और खता के तरीकों से तय कर सकता है। आदम की गलती है, जिसे हम एक जहनी बुराई से ताबीर कर सकते हैं, हुसूल तजुर्बात के लिए नागुजीर था। इकबाल खैर और शर को एक कल से ताबीर करते हैं, अगरचा वो एक दूसरे की जिद हैं और एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा हैं। वो कुरान की एक आयत से इस्तदलाल करते हैं जिसमें फरमाया गया है कि वनब्लूवकुम बिश्शर्री वलखैरी फितना, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 35। तर्जुमा, हम खैर व शर के जरिए आपको आजमाते हैं। खैर व शर के दाइयात इंसान के अंदर भी बरसरे पैकार रहते हैं और इंसान समाज में अच्छाई और बुराई का मुकाबला रहता है। इस किस्म का माहौल इंसानी शख्सियत की तरबियत और तामीर के लिए नागुजीर है। इसी तरह मुआशरती बालीदगी के लिए भी टूट फूट के अमल से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये अफराद और अकवाम पर मुनहसर है कि वो बिगाड़ और बुराई से मकलूब हो जाएं और उनमें इंतशार और कमजोरी रासिख हो जाती है, या उनमें आला इखलाकी कदरें रवाज पा जाती हैं और वो एक मुस्तहकम और महजब कौम की हैसियत से आलमी सतह पर उभरते हैं। इस कायनात और इंसानी जिंदगी में बिला शुबह शर और बिगाड़ की कुव्वतें भी बरसरे अमल हैं, लेकिन कायनात की बुनियाद नज्म और तवाजुन पर है और इंसानी जिंदगी का मकसद हुस्न अमल है। खुदा हर चीज पर कादिर है, वही खालिक खैर है और वही खालिक शर है, लेकिन उसके मनसूबा कायनात का असल मकसूद हुस्न अमल है। इसलिए वो हुस्न अमल का हुक्म देता है और अंबिया और रसूल की बैसत का मकसद भी यही है। कुरान हकीम में इरशाद होता है, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल ग़फ़ूर। सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 1-2। तर्जुमा, नहायत बुजुर्ग बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और जिंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो गालिब बख्शने वाला है। इकबाल ने खैर शर के राज को खूबसूरत और आम फहम अंदाज में इस तरह बयान किया है कि जागोयम नुक्ताय जश्तो नको चेस्त जवां लर्जद के मानी पी पेच दार अस्त बरूं अज शाख बीनी खार गुल रा दरून ऊ न गुल पैदा न खार अस्त। पयाम मशरिक, तर्जुमा, मैं क्या बताऊं कि अच्छाई और बुराई का राज क्या है। जबान कांपती है क्योंकि इसके वाणी पेचीदा है। फूलों और कांटों को शाख से बाहर देखता हूँ, इसके अंदर ना फूल दिखाई देता है और ना कांटा। इसी तनाजुर में इस बाल इबलीस के वजूद को इंसान के तजकिए और इसके किरदार की मजबूती के लिए नागुजीर करार देते हैं। अगर इबलीसी कुव्वत ना हो तो इंसान की ख्वाबीदा सलाहियतें परवान नहीं चढ़ सकती और इंसान में अज़्म हिम्मत और इस्तकामत ऐसी खसूसियात नहीं आ सकती। इकबाल जिब्रील और इबलीस के मकालमे को इस तरह नज़्म करते हैं। पार्ट नंबर 2 यहाँ मुकम्मल होता है।